ये रेडियो नेपाल है। अब सीमा शर्मा से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। तुर्कमेनिस्तान में आयोजित भूपरिवेष्टित विकासशील राष्ट्रों के संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली द्वारा उच्च स्तरीय विषयगत गोलमेज सम्मेलन को संबोधन, वार्षिक योजना और समय तालिका बनाकर चालू आर्थिक वर्ष का बजट को क्रियान्वयन करने का उप प्रधान एवं अर्थमंत्री विष्णु पौड़ेल का निर्देश, शिक्षकों की पदोन्नति प्रक्रिया को लेकर संसदीय समिति में सहमति और जम्मू कश्मीर के उधमपुर में वाहन नाले में गिरा 3 सीआरपीएफ जवानों की मौत। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने आर्थिक सहयोग, क्षेत्रीय एकीकरण और साझा प्रगति की भावना के तहत नेपाल को अपने पड़ोसी और अन्य देशों के साथ साझेदारी को मजबूत बनाने की प्रतिबद्धता जताई। भूपरिवेष्टित विकासशील देशों के तीसरे संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के दौरान आज यहां आयोजित भूपरिवेष्टित देशों का सतत बुनियादी ढांचा, संपर्क नेटवर्क को सशक्तिकरण और बाधा मुक्त परिवहन प्रणाली विषयक उच्च स्तरीय गोल में चर्चा को संबोधित करते हुए उन्होंने यह प्रतिबद्धता व्यक्त की। प्रधानमंत्री ओली ने समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली की राष्ट्रीय आकांक्षा को पूरा करने के लिए नेपाल द्वारा सतत और तीव्र आर्थिक विकास के लिए बुनियादी ढांचे, मजबूत कनेक्टिविटी और निर्बाध परिवहन प्रणाली को प्राथमिकता दिए जाने की बात स्पष्ट की। उन्होंने समानता, समावेशीकरण और साझा प्रगति के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे, कनेक्टिविटी और ट्रांजिट पर ध्यान केंद्रित करने का आग्रह करते हुए कहा कि किसी भी देश को इन मुद्दों पर पीछे नहीं रहना चाहिए और एक बेहतर भविष्य के निर्माण के लिए साथ मिलकर काम करना चाहिए। सम्मेलन के दौरान आज ही आयोजित हिम नदों के पिघलने से भू परिवेष्टित विकासशील देशों पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव विषयक साइड इवेंट को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ओली ने हिमनदों के पिघलने की गति को कम करने के लिए वैश्विक समुदाय से साथ मिलकर काम करने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री ओली ने कहा कि हिमालय की रक्षा के लिए साथ मिलकर काम करने, नेतृत्व और साझेदारी बढ़ाने के लिए नेपाल तैयार है। प्रतिनिधि सभा के शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समिति ने तीन प्रकार से शिक्षकों की पदोन्नति का प्रस्ताव पारित किया। शिक्षा समिति की आज हुई बैठक में शिक्षकों की आंतरिक प्रतियोगिता, वरिष्ठता और कार्य प्रदर्शन मूल्यांकन तथा कार्य क्षमता के आधार पर पदोन्नति का प्रस्ताव पारित किया है। इसी तरह समिति द्वारा शिक्षकों के कार्य प्रदर्शन मूल्यांकन का औसत 90% से घटाकर 80% करने का प्रस्ताव भी पारित किया गया है। बैठक में शिक्षकों के कार्य प्रदर्शन मूल्यांकन की गणना करते समय पिछले 5 वर्ष के प्रदर्शन का औसत 90% के बजाय 80% करने का प्रस्ताव पारित किया गया। यह प्रावधान विद्यालय शिक्षा विधेयक से संबंधित उपसमिति की रिपोर्ट में संशोधन करके लाया गया है। साथ ही नेपाल शिक्षक महासंघ के सदस्य रहे शिक्षकों के प्रधानाध्यापक नियुक्त होने पर उनकी सदस्यता स्वतः निष्क्रिय हो जाने का प्रस्ताव भी समिति द्वारा पारित किया गया। बैठक में शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मंत्री रघुराज पंत ने कानून बनाते समय देश की वास्तविकता को ध्यान में रखने की आवश्यकता पर बल दिया। मंत्री पंत ने वंचित अनाथ बच्चों को निशुल्क और बुनियादी शिक्षा सुनिश्चित करने का उल्लेख करते हुए कहा कि निजी और सरकारी दोनों प्रकार के स्कूलों के हित को ध्यान में रखते हुए लाए गए प्रस्तावों को स्वीकार कर विधेयक को यथाशीघ्र आगे बढ़ाने का आग्रह किया। समिति की बैठक में अभी विद्यालय शिक्षा विधेयक 2082 से संबंधित उपसमिति की रिपोर्ट पर चर्चा जारी है। महिला तथा सामाजिक मामला समिति की बैठक में महिला, बाल बालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मंत्रालय को दिए गए निर्देशों के कार्यान्वयन की स्थिति पर चर्चा हुई है। समिति की आज हुई बैठक में महिला, बाल बालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मंत्रालय की सचिव लक्ष्मी कुमारी बसनेत ने बताया कि महिलाओं और किशोरियों की सुरक्षा, आत्मनिर्भरता और सशक्तिकरण को मजबूत करने के लिए समिति तथा सीडो संबंधित विकास भागीदारों के सुझावों के अनुसार मंत्रालय द्वारा नीति निर्माण की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही है। बैठक में सांसदों ने दुर्गम जिलों तथा कुपोषण से प्रभावित जिलों के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण भोजन और पोषण उपलब्ध कराने पर जोर दिया। सांसदों ने यह भी कहा कि काम करने में सक्षम एकल महिलाओं को भत्ते के बजाय कौशल विकास और रोजगार के अवसर दिए जाने चाहिए। इसके अलावा उन्होंने मंत्रालय का ध्यान अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों की ओर आकर्षित किया। साथ ही बैठक में सांसदों ने कहा कि दुर्गम क्षेत्रों की पीड़ित और विकलांग महिलाओं को न्याय पाने में कठिनाई हो रही है, इसलिए न्याय तक पहुंच उनकी पहुंच की सुनिश्चितता की जानी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि गरीबी के कारण अभिभावक रहित बच्चे अब मानव सेवा आश्रमों में देखे जाने लगे हैं, इसलिए राज्य को इन बच्चों के संरक्षण पर विशेष ध्यान देना चाहिए। प्रतिनिधि सभा के कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति की बैठक में सार्वजनिक संस्थाओं को अनुमति देने की पुरानी प्रक्रिया को ही यथावत रखने की सहमति हुई है। समिति की आज की बैठक में सांसदों ने प्रचलित भूमि संबंधी आयन के लिए दफा 12 के दफा 6 में हदबंदी से अधिक जमीन रखने के लिए अनुमति पत्र करने से पहले किसी भी सार्वजनिक संस्था, उद्योग, कंपनी, प्रतिष्ठान, शैक्षिक संस्था, परियोजना व संघ संस्था को जमीन के उपयोग संबंधी विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार करके संबंधित निकायों से स्वीकृत करने का प्रावधान ही उचित होने के अड़ान नहीं छोड़ने के कारण सरकार उसी प्रावधान को रखने के लिए तैयार हुई है। कार्यवाहक प्रधानमंत्री तथा शहरी विकास मंत्री प्रकाश मान सिंह ने चूरे क्षेत्र के संरक्षण और जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने के लिए तीनों तहों की सरकारों और स्थानीय निकायों के बीच सहयोग आवश्यक बताया। सिरहा के लहान में आज आयोजित एक कार्यक्रम में कार्यवाहक प्रधानमंत्री सिंह ने कहा कि चूरे क्षेत्र के दीर्घकालिक संरक्षण के मैदानी इलाकों में होने वाली पर्यावरणीय समस्याओं का समाधान होगा। उन्होंने कहा कि किसी भी योजना को समय पर पूरा करने के लिए सभी को अपने अपने स्तर पर प्रयास करने चाहिए और सरकार भी इसके लिए सहयोग प्रदान करेगी। रेडियो नेपाल से प्रसारित समाचार किए जा रहे हैं। अब कुछ देर विज्ञापन।
हजुर दर्शन
भाग्यवानी बाबू राम्ररी आइपुग्नु भयो नि।
हजुर राम्ररी पुगे। ऊ चाहिँ मेरो कलेजको बेस्ट फ्रेन्ड।
नमस्ते बाबुजू।
नमस्ते, आउनु न भित्रै।
हुन्छ बाबुजू।
अनि दादा त अफिस गइसक्नु भयो होला है?
उहाँ त बिहानै हो। हुन्छ, तपाईँहरू फ्रेस हुँदै गर्नु न, म खाना तयार गर्दै गर्छु है।
हस् हस् बाबुजू।
ओए वाइफाई होला नि, पासवर्ड माग्न।
हे त पनि एनटीसी को सस्तो डे प्याक छँदैछ नि।
ए हो र,
एनटीसी को डे प्याक लिन *14## डायल गर्न।
नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार।
अब बाँकी समाचार। सूचना तथा संचार प्रविधि मंत्री पृथ्वी सुब्बा गुरूङ ने नेपाल जापान के बीच तकनीकी साझेदारी को सुगम बनाने की प्रतिबद्धता व्यक्त की। नेपाल और जापान के बीच तकनीकी सहयोग को आसान बनाने के लिए आयोजित जापान नेपाल आईटी फोरम 2025 को आज काठमांडू में संबोधित करते हुए मंत्री गुरूङ ने कहा कि नेपाल सरकार संचार मंत्रालय के माध्यम से डिजिटल और आईसीटी क्षेत्र में पारस्परिक विकास को बढ़ावा देने के लिए जापान सरकार के साथ रणनीतिक सहयोग को सक्रिय रूप से प्रोत्साहित कर रही है। मंत्री गुरूङ ने डिजिटल परिवर्तन और आर्थिक आधुनिकीकरण के लिए कहा कि नेपाल सरकार को क्षेत्रीय और वैश्विक आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु हरित डेटा अवसंरचना, ग्रीन डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण के लिए जापानी निवेश की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय डिजिटल दृष्टिकोण को साकार करने में जापान का तकनीकी और वित्तीय सहयोग महत्वपूर्ण होगा। साथ ही उन्होंने बताया कि नेपाल G2G के ढांचे के तहत अपना स्वयं का उपग्रह प्रक्षेपित करने के लिए जापान का तकनीकी सहयोग चाहता है। मंत्री गुरूङ ने जापानी निवेशकों, शोधकर्ताओं और तकनीकी उद्यमियों से आग्रह करते हुए कहा कि वे नेपाल को सूचना प्रौद्योगिकी, नवाचार और सहयोग के लिए अपनी पसंदीदा गंतव्य स्थल बनाएं। इस साल फिर पशु चौपाया में लंपी स्किन का संक्रमण फैल गया है। लंपी स्किन रोग के संक्रमण 6 प्रदेशों के 29 जिलों में और 27,000 से अधिक पशु चौपाया में फैलने से 800 पशुओं का मौत हो गया है, ये जानकारी पशु सेवा विभाग ने दी। भारत के उत्तराखंड राज्य अंतर्गत उत्तरकाशी हरसिल क्षेत्र में क्लाउड ब्रस्ट होने के कारण आए बाढ़ व भूस्खलन में पड़के कुसे गांव पालिका 2 के 13 नेपाली संपर्क विहीन हो गए हैं। बाढ़ व भूस्खलन के कारण हुए मानवीय तथा भौतिक क्षति प्रति कुसे गांव पालिका ने गहरा दुख व्यक्त करते हुए शोक विज्ञप्ति जारी किया है। बागलुंग के निशीखोला गांव पालिका में 2438 घर परिवार बाढ़ व भूस्खलन के जोखिम में है। ऊंचे स्थान, नदी नजदीक और सड़क के किनार का घर जोखिम में होने के साथ 13,597 स्थानीय प्रभावित हुआ है। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले में गुरुवार को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF का एक वाहन सड़क से फिसलकर नाले में गिर गया। समाचार एजेंसी PTI के अनुसार इस दुर्घटना में CRPF के 3 जवानों की मौत हो गई है, जबकि 15 अन्य जवान घायल है। यह घटना करीब सुबह 10:30 कदवा इलाके में उस समय हुई जब 187वीं बटालियन के यह जवान बसंतगढ़ से एक ऑपरेशन से लौट रहे थे। इस वाहन में 23 लोग सवार थे। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने हादसे को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट के जरिए दुख व्यक्त किया है। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 27 से 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 21 से 23 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 29.7 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 22.3 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। तुर्कमेनिस्तान में आयोजित भूपरिवेष्टित विकासशील राष्ट्रों के संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली द्वारा उच्च स्तरीय विषयगत गोलमेज सम्मेलन का संबोधन, वार्षिक योजना और समय तालिका बनाकर चालू आर्थिक वर्ष का बजट को कार्यान्वयन करने का उप प्रधान एवं अर्थमंत्री विष्णु पौड़ेल का निर्देश, शिक्षकों की पदोन्नति प्रक्रिया को लेकर संसदीय समिति में सहमति और जम्मू कश्मीर के उधमपुर में वाहन नाले में गिरा 3 CRPF जवानों की मौत। रेडियो नेपाल से प्रसारित 10:00 के हिंदी समाचार समाप्त हुए। 11:00 आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। नमस्कार, शुभ रात्रि।